मैं सब समझ गया मसूद, तो के पास। खैर, अब सब कुछ ठीक हो जाए।
नहीं, कुछ चीजें हैं जो इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं होती, और वो भी वो दिले सोखता कि जो 2 साल तक एक बेजा तोहमत की वजह से जलकर खाक होता रहा। मेरे पास तो अब कोई दिल भी नहीं बचा। मैं तुम्हारे साथ के जिसने मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया और मुझे अपनी सफाई तक पेश करने नहीं दी, जिंदगी नहीं गुजार सकती।
क्या हुआ सरोश? परवाना क्यों चली गई? सरोश, क्या कह दिया था? जवाब दो मुझे।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मसूद।
रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो?
अगर तुम थक गई हो तो कंपनी मेरे सपोर्ट कर दो,
ताकि तुम उस जालसाज धोखेबाज फार्मर्स के सुपुर्द कर दो। फोन उठाओ धोखेबाज मसूद लानती।
कहाँ है वो तुम्हारा पार्टनर मेहरबान जिगरी दोस्त?
तुम भी मेरी ही तरह एक नामर्द और बेएतबार पार्टनर के चुंगल में फंस गए हो, जरा होशियार रहे।
कहाँ छुप गए हो कमीने मसूद? फोन उठाओ।
मुझे तो आप लोगों के हिसाब किताब की खबर नहीं थी ना, उसने मुझे ऐसा करने को कहा था। वो चाहता था कि पूरी कंपनी अपने नाम करवा ले।
अच्छा, तो बिलाखिर उसने अपनी असलियत दिखा ही दी। हाँ,
मेरा सब कुछ अपने नाम करवा के भाग गया। अब मेरा इस नाम का कोई दोस्त नहीं है और ना मैं चाहता हूँ कि हो।
तुम तो जानते ही हो कि मैं इस किस्म के कामों में माहिर हूँ।
जी, मुझे राजी साहब से काम था।
वो तो यहाँ से चले गए हैं, अभी 2-3 दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए।
मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ।
लेकिन मसूद साहब तशरीफ नहीं लाए।
तुम्हारी बात और है यार, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो।
आप इजाजत दीजिए, हम अपने काम खुद अंजाम देंगे, आप बस अपनी इन खबीस अरवाहों की मदद कीजिए।
सरोज करामती तो वो है जिसने ये कंपनी हमारे हाथों फरोख्त की और नकद रकम लेकर यहाँ से चला गया।
कहाँ खर्क हो गए वो जलील इंसान, हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था। हाँ,
ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो? क्या पागल हो गए? मेहरबान छोड़ो, मेरा
तय नहीं पाया था कि ढूंढ निकालोगे उसे। बोलो फिर तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे?
अभी तक उसने कोई रब्ता नहीं किया, अभी तक 48 घंटे पूरे नहीं हुए। अभी भाई दुनिया में क्या वक्त से पहले आए थे? फर्ज कर लो मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो क्या कर लोगे?
अभी इसी वक्त तुम्हें ले जाकर जेल की सलाखों के पीछे करा दूंगा।
अच्छा
जी।
तो फिर करा दो, जाओ। रुका किसने? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। है, लेकिन इतना सोचोगे अगर तुमने ऐसा किया तो ना तुम्हें उस मसूद तक पहुंच सकोगे और ना तुम्हें तुम्हारी कंपनी मिल सकेगी। बेटा जानी, तुम्हें इस वक्त मेरी जरूरत है, लिहाजा कोशिश करो कि मुअद्दब रहो। बस
बेहतर होगा कि हम आपस में डील कर लें। पसंद आई तजवीज? लगता है तुम्हें सिर्फ यही जबान समझ में आती है ना?
ये हो इलाहाबाद। मैं तुम्हें मसूद दूंगा। और तुम जानते हो ना, बिना पैसे की जिंदगी।
कितने पैसे चाहिए?
वो दिलरुबा जो इस वक्त दरवाजे पर खड़ी है।
तो तुम्हें दरवाजे पर खड़ी वो दिलरुबा चाहिए? बड़े ही शौकीन हो।
देखो भाई, तजुर्बा कहता है कि जब कोई किसी चीज की तलाश में होता है तो वो चीज यकीनन उसके लिए अहमियत रखती है। या तो कोई माली मामला बीच में होता है या फिर जाती मसला।
अच्छा
उस्ताद फरामर्स, कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया? पार्टी ना भाग जाए।
तुम चुप रहो और मुंह बंद करके बैठ
जाओ। सिर्फ कल तक की मोहलत दे रहा हूँ, समझे? अगर ढूंढ सके तो मैं ये गाड़ी तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं ढूंढ सके तो मैं तुम्हें और इस लड़के को, तुम दोनों को गाड़ी चोरी करने और जालसाजी के जुर्म में पकड़वा दूंगा। समझ गए? ये मेरा वादा है।
बड़े दयालु हो यार, उस बदबख्त लांती मसूद से बहुत मुख्तलिफ हूँ। मैं खुद पूरे तेहरान शहर को कल खंगाल डालूंगा, वो कहीं तो मिलेगा।
सूरत चाबी है।
जो मत मुझे सोचने दे कि अब क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। आखिर ये क्यों अब तक कमबख्त मसूद अपना टिकट और पासपोर्ट लेने नहीं आया?
जी
अस्सलाम वालेकुम मिसेस करामती, मैं हूँ बहनोश।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा?
मुझे सरोज से बात करनी है।
वो तो नहीं है, तुम्हें कुछ खबर है कि कहाँ होगा?
अफ्तार के वक्त तो मैं मिली थी उनसे।
हाँ, उसके बाद तो वो घर आया था। 2 साल बाद उसकी बीवी और बच्चा आए हैं।
कौन, क्या परवाना साहिबा?
हाँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि आधा घंटे के बाद परवाना नाराज होकर चली गई। मैं सरोज के पास गई तो देखा वो किसी को मार डालने का कह रहा था। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरी बात भी नहीं सुनी।
क्या बताऊं, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो कहें।
बस अगर मुमकिन हो तो ये जानने की कोशिश करो कि उसका परवाना के साथ क्यों झगड़ा हो गया। जब उसे पता चला कि उसने शादी नहीं की है तो वो बेइंतहा खुश हुआ था, लेकिन पता नहीं एक दूसरे को ऐसा क्या कह दिया कि वो दोनों फिर से नाराज हो गए। अगर तुम पूछ सको तो मुझे बताओ।
अगर मुमकिन हो तो परवाना साहिबा का एड्रेस मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कल उनसे जाकर खुद मिलूंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। शायद मैं उन्हें कायल कर सकूं।
लिखो।
जी फरमाइए।
ये पार्टीशन यहाँ से हटा देंगे तो दोनों पोर्शन एक हो जाएंगे।
हाँ यही ठीक है
जी,
ये सही है, लेकिन यहाँ ये हिस्सा क्यों खराब है?
आप बेफिक्र हो जाएं, मैं यहाँ पर बेहतरीन चीज बनाऊंगा।
लेकिन जबरदस्त होनी चाहिए।
बिल्कुल जनाब, आपकी पसंद के मुताबिक होगा।
ठीक है, देखते हैं क्या।
और बताइए।
और कुछ नहीं, बस इतना ही था जो काम मेरे जहन में थे वो बता दिए मैंने, बस सब ठीक तरह होना चाहिए।
आप बेफिक्र हो जाएं जनाब।
आप फिर आ गए, आपको कोई और काम नहीं है? अरे मेरे भाई, भला एक ही नाम और वल्दियत के दो लोग हो सकते हैं?
हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं सरोज करामती हूँ, मेरे पार्टनर ने आपको धोखा दिया है।
मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। फजूल में अगर अपना वक्त जाया मत करें, जाए जाकर अपनी कंपनी को ताला लगाइए।
वैसे आपने किस हक से ये ताले तोड़े हैं?
उसी हक से जिससे आपने ये ताले बदलवाए।
बंदे खुदा, आखिर आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरे पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, धोखा।
तो जाए जाकर अपने उसी पार्टनर का गिरेबान पकड़े, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए?
अच्छी बात है, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अगर अदालत आपको यह हक दे दे तो फिर यहाँ की चीजों को हाथ लगाइएगा। फिलहाल तो आपका ना इस कंपनी के शेयर्स पर कोई हक है और ना इस जगह पर।
मुझे ये हक हासिल है, अगर हासिल ना होता तो पुलिस खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में यहाँ के ताले ना तोड़वाते।
अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आप सुन लें, अगर इस ऑफिस की दीवार पर एक कील भी ठोगी तो मैं आपके खिलाफ शिकायत कर दूंगा, लिहाजा ख्याल रहे।
अब तक वाज़ह ही नहीं हुआ कि असल मालिक
मैं हूँ।
आप अपना काम करें मिस्टर, मैंने इस फ्रॉडिया की पहली कंप्लेन कर दी है, इसे मैं खुद निपट लूंगा।
क्या कहा, फ्रॉडिया?
जी
फ्रॉडिया
जी।
तो ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि हक पर कौन है। अगर मैंने आपके हाथों में हथकड़ी डलवाकर यहाँ से बाहर ना निकलवा दिया तो मेरा नाम बदल देना।
देख लेते हैं, जाए जो आपके दिल में आए वो करें।
देख लेना।
देख लेंगे,
अभी आता
हूं। जरूर आइए, शौक से आइए।
ये कौन है जो रोज़
क्या पता कौन है, बदबख्ती है हमारी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहनोश शफी है, क्या ये नजफियान साहिबा का घर है?
जी।
क्या आप मिस परवाना ही हैं?
जी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं?
जी मैं आपका कुछ वक्त लेना चाहती थी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी।
किस सिलसिले में?
करामती साहब के मुतालिक।
आपका उनसे क्या ताल्लुक है?
अगर आप इजाजत दें तो मैं अंदर आके आपको सब कुछ बता दूं, जरा तफसीली बात करनी है।
ठीक है, अंदर आ जाइए।
पहली बार मैं ये सुन रही हूँ कि कोई दो इंसान किसी दूसरे आलम में एक दूसरे से मिले हों। पहले मैं ये समझती थी कि ये सिर्फ कहानियों में होता है।
जानती हूँ इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये एक हकीकत है। हमने इस तवील ख्वाब में एक दूसरे को सब कुछ बता दिया था। मैं सरोज साहब के बारे में सब कुछ जानती हूँ, वो भी मेरी और बाकी लोगों की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं।
अच्छा, तो फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
तो क्या आप वाकई में मेरी मदद करना चाहती हैं? बताइए।
अगर मेरे बस में हुआ तो हाँ जरूर।
वो दरअसल अगर आप राजी हो जाएं, यानी कि अगर आप मान जाएं कि
क्या
कि आप सरोज साहब को माफ करके अपने घर लौट आएं, तो यही एक बड़ी मदद होगी जो आप मेरे लिए कर सकती हैं।
मेरे घर लौट के आने या ना आने से आपकी मदद कैसे हो सकती है?
क्योंकि सरोज साहब भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके साथ हमने वादा किया था। हम जो कुछ कर सकते थे वो बाकी लोगों के लिए किया सिवाय अपने। अब मैं सरोज साहब के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि सरोज साहब की मुश्किल को आसान कर सकूं। क्या आपके ख्याल में इसमें कुछ हर्ज है?
नहीं, हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन मैं सरोज को कभी माफ नहीं कर सकती।
लेकिन क्यों? आप तो बिल्कुल भी कीना परवर नहीं लगती। मेरे ख्याल में तो जब एक शख्स को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफी भी मांग ले तो उसे माफ किया जा सकता है और सब कुछ भुलाकर दोबारा जिंदगी शुरू की जा सकती है।
ये इतना आसान भी नहीं। हर गलती काबिले तलाफी नहीं हुआ करती। बाज़ जख्म ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भर पाते हैं। तोहमत भी उन्हीं जख्मों में से एक है। मेरा और सरोज का मसला कोई छोटा मसला नहीं है। जो अगर वो कह दे कि गलती हो गई और मैं कह दूं कोई बात नहीं। क्या तुम्हारी शादी हो गई है?
नहीं।
तुम नहीं जानती जब किसी को इतनी संगीन तोहमत के बाद तलाक दी जाती है और उसे अपनी सफाई में कुछ कहने की इजाजत नहीं दी जाती, और जब एक औरत और उसके बच्चे को अकेला, वो भी एक ऐसे माशरे में कि जहाँ हर तरफ भूखे भेड़िए ताक में बैठे हों, और उन्हें उनके बीच अकेला छोड़ दिया जाए, उस पर तुम तवक्का रखती हो कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? इस तमाम अरसे में एक बार भी उसने सोचा कि मैंने इस अकेले बच्चे को कैसे पाला होगा? बीमारी में आधी रात को उसको डॉक्टर के पास कैसे लेकर गई होंगी? घर से निकालते वक्त उसने ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा? क्या उसको हमारी फिक्र नहीं थी? मैं कैसे उसे माफ कर दूं? जब भी तुम मेरे इन सवालों और जो सख्तियां मैंने झेली उनका जवाब दे सको तो मेरे पास चली आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जा रही हो?
जब आप हक बजानब हैं और मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है तो बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं तो ये चाहती थी कि हमने मौत के नजदीक जो मुशाहिदा किया है और दीगर अरवाहों से जो वादे किए हैं उसके मुतल्लिक आपसे बात करूं, कि शायद इस तरह सरोज साहब के बारे में आपकी राय बदल सकूं और आप जान सकें कि वो वाकई बदल गए हैं।
दिल तो चाहता है कि मैं यकीन करूं। कल रात मुझे पता चला कि उसने अपने दोस्त पर अंधे एतमाद की वजह से अपना घर बर्बाद किया, तो मेरे जख्म फिर से हरे हो गए। अगर सरोज ने जितना एतमाद मसूद पर किया था मुझ पे किया होता तो आज ये सब कुछ ना होता।
अच्छा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अगर मुझे और सरोज साहब को दोबारा जिंदगी मिलने में कोई मसलहत ही नहीं थी, फिर क्यों खुदा ने हमें दोबारा जिंदगी दी? हम तीन लोगों में से जिन्हें दोबारा जिंदगी मिली है सिर्फ सलीम ज्यादा ही हैं, कि जिनकी जिंदगी पूरी तरह से सेटल हो चुकी है। मैं और सरोज साहब जो बजाहिर दुनिया में कोमा में चले गए थे, अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है। अब जबकि वो माजी की गलतियों का अजाला करना चाहते हैं, लेकिन अगर अजाला मुमकिन ही ना हो तो फिर वापसी के कोई मायने नहीं।
अगर तुम्हारी बातें सही भी हो तब भी इन दो सालों में मेरा जहन इस कदर खराब हो चुका है कि अब तो खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। हद तक कि मुझे तो ये भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम सिर्फ यहाँ कार्य खैर की नीयत से आई हो। पता नहीं क्यों जब से तुम यहाँ आई हो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।
देखें, एक बात मैं आपको सच सच बता देना चाहती हूँ, और वो ये कि सरोज साहब इस तमाम अरसे में यही सोचते रहे थे कि आप उसी शख्स से शादी करेंगे जिसे उन्होंने देखा था, लिहाजा इन मनफी सोचों को झटक दें। फिर खुले जहन से इस बारे में सोचिएगा जरूर आप। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
कुछ पता भी है क्या कह रहे हैं? कभी आपके अजीजों कारब आते हैं और कहते हैं आप गुम हो गए, फिर जब आपको ढूंढ लिया तो कह दिया कि हम तो बुर्ज सदफ डील करने आए थे, फिर कत्ल के शुबे में आप धर लिए जाते हैं। लीजिए पढ़िए, जावेद साहब की तस्वीर छपी है और लिखा है जमीन हत्याने और धोखाधड़ी के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और कुछ दिनों पहले आप ऐसे शख्स के साथ डील में मसरूफ थे, और अब आए हैं कि आपके पार्टनर आपकी कंपनी को बेचकर भाग गया है। अब तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुद आप पर शक हो रहा है करामती साहब।
मैंने आपको हकीकत बताई है। जिस रात मैं सुबह 11 बजे से जावेद के ऑफिस में था तो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए और साइन होकर वापस भेज दिए गए।
मुमकिन है इससे पहले कि आप बुर्ज गए हों डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए हों। बहरहाल आपकी कंपनी के खरीदार के पास कानूनी दस्तावेजात हैं।
लेकिन जब रजिस्ट्रार ने मेरा शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात देखे तो मेरे पार्टनर के खिलाफ मेरी कंप्लेंट दर्ज कर ली है।
अफसोस है कि अदालती फैसले आने तक हक आपके खरीदार के साथ है, क्योंकि उस बदकिस्मत ने कीमत तो अदा की है ना। आप भी बजाय खरीदार की कंप्लेन करने के बेहतर होगा अपने पार्टनर के खिलाफ कंप्लेन करें। जी क्या सोचा आपने, कंप्लेन करेंगे या नहीं?
जी जी, लेकिन बस मुझे मौका दीजिए, शायद मैं उसे ढूंढ निकालूं। मैं कल आपको जहमत दूंगा।
अगर आपको इत्मीनान है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो अगर आप इस वक्त भी उसके खिलाफ कंप्लेन करवाते हैं तो ये काफी लेट है, कल की बात तो छोड़ दें। बाहर सूरत आप खुद मुख्तार हैं।
तो ठीक है, लेकिन पहले मैं खुद चाहूंगा कि उसे ढूंढ निकालूं। अगर मिल गया तो कोशिश करूंगा कि इस मसले को खुद ही हल करूं, क्योंकि वाकई मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है।
जैसा आप मुनासिब समझें।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको जहमत दी।
ये तो मेरा
फर्ज। इजाजत दीजिए।
खुदा हाफिज।
थैंक यू। खुदा हाफिज।
السلام علیکم۔
ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ یہ لو، یہ تمہارے ویزے کا فارم ہے۔ آج کے بعد تم جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ اب میں تمہاری راہ میں حائل نہیں ہوں گا۔ چاہو تو اپنی ماں سے بھی کہہ دینا کہ وہ تمہارے ویزے کے لیے اپلائی کر دے۔
آپ کا شکریہ۔ لیکن اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ کا ارادہ بدل گیا؟
میرے بس میں جو کچھ تھا وہ میں نے تمہارے بہتر مستقبل کے لیے کیا۔ ہمیشہ کوشش کی کہ تمہیں ہر چیز مہیا کروں، کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ لیکن سمجھ آیا کہ زندگی میں وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے بر وقت صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اب میں اپنی بیٹی پر اعتماد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعتماد کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اپنے باپ کو نہیں بھولے گی۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، جا जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी, जहां तुम्हें सुख मिले वही मेरा सुख है। माँ बाप होने की यही खासियत है, तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन तुम्हें अफसरदा देखना मेरे लिए कहीं ज्यादा मुश्किल है। तुम चाहो तो अभी जाकर अपनी माँ को ही बता सकती हो, मतमईन होऊंगा तुम्हें खुश देखकर।
हेलो,
अस्सलाम वालेकुम करामती साहब,
बहनोश बात कर रही हूँ।
कैसी हैं आप, ठीक हैं?
जी बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा
मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया।
अगर जहमत ना हो तो आपसे मिलना चाह रही थी दरअसल।
अच्छा, वो दरअसल मैं इस वक्त जरा बिजी हूँ, आप जानती हैं।
मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि अगर आपको जहमत ना हो तो।
जी जी, सच तो यह है कि मैं जरा कंपनी के कामों में उलझा हुआ हूँ, इसी सिलसिले में अभी मुझे कहीं जाना भी है और फिर मेरे पास गाड़ी भी नहीं है।
लेकिन कल रात तो आपको बहुत जल्दी थी कि आपके प्रपोजल का जवाब दूं मैं। दरअसल इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रही थी, तो फिर मिले।
जरूर जरूर, इंटरेस्टिंग।
अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या बात है?
जी वो चूंकि मैं इस वक्त जरा बिजी हूं ना, इसलिए दरअसल एक मसले ने मुझे काफी उलझाया हुआ है।
देखिए ग्रांती साहब, मेरा इस वक्त आपसे मिलना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना आप? जरूरी है क्रांति साहब, सुन रहे हैं ना आप? मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी जरूर, आप बस मुझे ये बताइए कि कब और कहाँ।
मैंने आपके प्रपोजल पर बहुत गौर किया, इसलिए मैं चाह रही थी कि जल्द से जल्द आपको अपने फैसले से भी आगाह कर दूं।
जी जी जरूर, फरमाइए।
जी मुझे मंजूर है, मतलब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको मेरा जवाब सुनकर खुशी नहीं हुई?
क्यों नहीं, बहुत ज्यादा, वो बस जरा।
जरा क्या, खैरियत तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है?
जी जी बिल्कुल, बस जरा मैं शौक में आ गया था और कुछ नहीं।
अच्छा तो जब तक आप यहाँ बैठिए और जरा सोच लें।
किस बारे में?
अपनी आइंदा की जिंदगी के बारे में और मेरे बारे में। मैंने कुछ गलत कह दिया?
अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मैं कहना चाह रहा था कि यानी मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में कैसे कहूं, मैं
जो कहना है कह दें।
वो दरअसल कल रात मैंने जो कुछ भी आपसे कहा वो सब बिल्कुल सच था, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ। लेकिन कल रात जब मैं घर पहुंचा तो देखा नीमा और परवाना घर मामा के पास आए हुए थे। आप जानती हैं मैंने अपने सबसे नज़दीक तरीन दोस्त की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर डाली। मैंने नीमा और परवाना के साथ बहुत बुरा किया है।
तो गोया कल जो आपने मुझसे कहा वो मजाक था? तो गोया आपने मेरे साथ भी खेल खेला है?
नहीं, मैं वाकई पता नहीं किस तरह कहूं कि आपको मेरी बातों का यकीन आ जाए। मेरे खुदा, मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा, आप हक रखती हैं, मैं वाकई आपसे बहुत।
हजरत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं आज परवाना साहिबा के पास गई थी, मैं जानती हूँ कि आप परवाना साहिबा और नीमा को बहुत ज्यादा चाहते हैं। मैंने जो कुछ भी अभी कहा है उसे भूल जाइए, मैं इत्मीनान कर लेना चाह रही थी। वरना मेरी राय भी यही है कि मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहूंगी, परवाना और नीमा की मौजूदगी की वजह से नहीं, बल्कि मैंने काफी सोचा है और फिर ही इस नतीजे पर पहुंची हूँ।
काश
मैं और आप कल यहाँ आए ना होते और हमारे दरमियान उन बातों का तबादला ना हुआ होता। मैं ये तो नहीं जानती कि आपने मुझे प्रपोज क्यों किया था। शायद गलती मेरी ही थी। शायद उस दौरान जब हमने साथ काम किया था कि मेरा रवैया कुछ ऐसा रहा कि आप समझे कि मैं आपको।
नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। परवाना से अलीदगी के बाद मुझे खवातीन से बेजारियत हो गई थी। हत्ता चंदर से पहले तक मेरे यही एहसासात और जज्बात थे, यहाँ तक कि उस वाक़े और आपसे मुलाकात के बाद मेरी ये सोच बदल गई। हम अगर आलम अरवा में एक दूसरे से ना मिले होते और फिर आपके अखलाक और मेरे और आपके अंदर जो तब्दीलियाँ आईं उसकी वजह से मैंने ये फैसला किया था। पता नहीं क्यों कुछ अरसे पहले जब मसूद ने परवाना की शादी की झूठी खबर मुझे सुनाई तो मैंने फिर क्यों यकीन कर लिया। हत्ता कि मुझे शदीद गुस्सा आया कि परवाना ने दूसरी शादी क्यों कर ली। हालांकि अगर ये बात सच भी होती तब भी मुझे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी। कल रात आपसे खुदाहाफिजी करने के बाद जब मैं घर पहुँचा, उससे मिला और मुझे असल बात पता चली, तब मुझे पता चला कि मैं अब भी उससे पहले ही की तरह चाहता हूँ और हर तरह से उससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ।
मुझे भी आज ही अंदाज़ा हुआ है कि मैं आपको अभी भी चाहती हूँ, लेकिन चूंकि ये है कि इन दो सालों में उन्होंने बहुत मुसीबतें झेली हैं, लिहाजा उन्हें बुलाने के लिए उन्हें ज़रा वक्त तो दीजिए। वो दरअसल मैं आपको यही बताने आई थी कि आप जान लें और साबित कदम रहें जनाब। मैं आपकी, नीमा की और परवाना साहिबा की सलामती के लिए दुआगो रहूंगी। शायद आज ही हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है जनाब, क्योंकि बाबा ने अब मुझे जाने की इजाज़त दे दी है और आज रात को अपनी मम्मा के साथ अमेरिका जाने के लिए मैं दुबई जाऊंगी और आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा है मैंने। हाँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है जनाब। ये आप थे जिन्होंने अपनी साबित कदमी से मुझे भी मजबूर किया। मैं भी अपने अहद पैमान पर कायम रहूंगी, हत्ता के अपनी जान तक की परवाह नहीं की।